राधिकाय सदा कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमो वैराग्यजुग भक्तिरसं प्रयत्नै अपायन्मानुभेक्षुमन्त कृपां रुधिरिज परदुःखदुःखी सनातनस्तं प्रभुमाश्रया श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्थिरं शिवम् यं प्रव्रजन्तमनुते तमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकात्तर्याजुभाव पुत्रेति सम्मेतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतरितयं मुनिमानतु तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना जिज्ञाय राधे त्वं नय मां शरणम्।
नारद श्री नारद गोस्वामी उद्धव जी और गो कुमार का वार्तालाप चल रहा है। उसमें नारद जी आनंद में उत्फुल्ल होकर के कृष्ण लीलाओं का नमन कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। लीलाओं का स्मरण होता जाता है, उन लीलाओं का नाम लेते हुए उसमें से हम लोगों ने गोपी वेणुगीत से संबंधित कई दिनों से कुछ आलोचना किया। विशेष करके हम लोगों के गोस्वामियों का विचार जी गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का विचार और उसमें भी विशेष करके चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इनके हृदय में जो भी ये चैतन्य महाप्रभु जी इसके मूल वही है। वो यदि नहीं आते और उनके हृदय में ऐसी प्रेरणा नहीं करते तो ऐसी चीजें जगत में प्रकाशित नहीं होती। ये चैतन्य महाप्रभु इसके मूल, इसलिए बोलिए वैष्णव लोग क्या श्रीमद्भागवत अनुशीलन के समय, नित्य लीला के समय, कोई ग्रंथ पाठ करने के समय, कुछ भी भक्ति की क्रिया आरंभ करने के पहले चैतन्य महाप्रभु की जरूर वंदना और उनके चरणों में प्रपत्ति जरूर ग्रहण करके ही चले, चाहे सनातन गोस्वामी हो, रूप गोस्वामी हो और उनके जितने भी अनुज वैष्णव हैं, जरूर उनकी किसी न किसी रूप में जरूर वंदना करके उनकी कृतज्ञता को स्वीकार करके आगे बढ़े। जो महाप्रभु की कृतज्ञता को नहीं ग्रहण करते वो गौड़ीय वैष्णव है ही नहीं। तो समझो जैसे उनकी बुद्धि में अभी कुछ ये सब समझ में नहीं, महाप्रभु का अवदान उसने समझा ही नहीं। इसलिए हम लोग जो अभी अनुशीलन कर रहे हैं ये सब चैतन्य महाप्रभु जी की कल्पना कर रहे हैं। ऐसा समझ हम लोग कल हंसाय मद्रवला श्लोक का अनुशीलन कर रहे हैं। तो इसमें हरिदास वज्र शब्द आया था, इसमें हमने अपने सांप्रदायिक दृष्टिकोण हमने उपस्थित किया और लोग उनको भले ही भगवान ही मानते हों गिरिराज जी को और उनकी उपासना राधा कृष्ण की उपासना इत्यादि मानते हैं, किंतु हमारे संप्रदाय में इनको हरिदास वर्ज ही माना गया क्योंकि गोपियों से अभी कोई प्रमाण ही नहीं हो सकता और गोपियों में भी स्वयं जब श्रीमती जी ने अपने मुख से राधिका वक्त चंद्रा राधिका जी के मुखचंद्र से जो बात निकली, कृष्ण से भी निकलती और राधा जी से भी निकलती, तो हम तो राधा जी की ही बात को प्रमाण मानते। कृष्ण कभी कभी लबार भी होते हैं, कभी कभी मुख के पर जिसके मुख पर वैसी बात कह देने के लिए। दो गोपियां हैं तो एक गोपी कह तुम हमारी कब से बड़ी है, और वो मिल जाएगी तो वो कहने तुम ही हमारी सबसे बड़ी। तो रुक्मिणी थी जिसे वही बात सब सभावना से वही बात जिसके मुख पर वैसी बात कह देने, इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती से ठाकुर जी कहते हैं मथुरा वासियों के बातों पर हम विश्वास नहीं करते। तो वो कृष्ण का वह अंश जो मथुरा वाला अंश है उस पर हम लोग विश्वास नहीं करते, किंतु श्रीमती राधिका जी पर पूर्ण विश्वास। इसलिए उनका कहना राधिका भी राधिका मुखचंद्र ये मुख से जो निकला है ये हरिदास वर्ज हैं, इसलिए हम लोग उनको हरिदासों में से ही करें। और उसमें हम लोगों का भी कलाप है, भगवान रहने तो दूरी हो जाएगी और यदि भक्त की श्रेणी में रहने तो दूरी कम रहेगी, वो सहज ही मिलेंगे। इसलिए गौड़ीय वैष्णव मात्र ही उनको हरिदास वर्ज रखता है। चैतन्य महाप्रभु को एक बार वैष्णव ये यहाँ के सनातन इत्यादि ने गुंजामाला और एक गिरिराज जी की शिला भी, उस शिला को पाकर के बड़े आनंदित हुए, सिर पर रखे न आंखों के पलकों के ऊपर रखे न हृदय के भीतर रखे न बाहर रखे, कोई चीज स्थिर नहीं कर पाए। समुद्र के पानी से स्नान कराएं या परमानंदपुरी के कुप से गंगा जल मंगा करके उससे स्नान कराएं या आंखों के जल से स्नान, कुछ भी स्थिर नहीं। कहाँ रखें कैसे पूजा करें, वो गिरिराज जी को कृष्ण का स्वरूप और गुंजामाला को राधा जी का स्वरूप मान करके सेवा करें। पांच पत्तियों को आठ पत्तियों को बीच में सुंदर कोमल तुलसी मंजरी और बीच में दोनों पत्ते कोमल लेकर के एक पूजा पानी उनको अर्पण भाव के सहित सेवा करते, उनको देखते ही बस गोवर्धन गिरी की बातें और गोपियों की बातें सबकी बातें याद आ जाती, उनके लिए भाव से बात बहुत ही सुंदर। हम लोगों के लिए भाव सेना भी बहुत बहुत कठिन। कुछ दिन पूजा करने के बाद में गिर उनको दे दिया रघुनाथ दास गुप्ता, देखा जाइए जो के लड़का है, ठीक उसकी पद्धति भी बतलाई, तुम निष्किंचन वैष्णव है, तुम्हारे पास कुछ ऐसा नहीं जो सोने की पलंग बना दो मंदिर बना लो और खाने के लिए राज हो और 10 बार 56 कितने बार उनको देना है ये सब हमारे लिए संभव नहीं। तुम वही तुलसी के आठ और पानी उनको देकर के उनकी भाव से बात करते, वो उनको उनकी सेवा करते थे। किंतु कैसी सेवा करते थे, महाप्रभु जिस रूप में करते हैं किंतु वो करते थे इस रूप में, राधा और कृष्ण का प्रेम देने वाले के रूप में करते थे। उन्होंने एक जगह लिखा है या रूप गोस्वामी ने लिखा है, राधा और कृष्ण को प्रेम देने वाले वृंदावन में गिरिराज गोवर्धन जी और यमुना जी दो का नाम गिना है, ऐसे प्रेम को देने वाले। तो वो इसी के रूप में सेवा करते थे, इसमें हम लोगों का लाभ है। और कृष्ण स्वयं यदि गिरिराज जी हो जाएंगे तो उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, अपने को पूरे रूप में नहीं दे सकते क्योंकि अपने वो है ही नहीं है, अपना जो कुछ है दे दिए सब कुछ तो वो तो दे दिया है श्रीमती जी को, अपना तो कुछ नहीं वो देने के लिए, इसलिए ये लोग कुछ देंगे तो ये सब कुछ दे सकती है पूर्ण रूप में कृष्ण। कृष्ण अपने को पूर्ण रूप में नहीं दे सकते, इसलिए हमारे संप्रदाय में इस रूप में सेवा की बात है। इसलिए हम लोग भी किसी रूप में सेवा करेंगे। ये राधा और कृष्ण के प्रेम देने वाले हैं, इनका इनकी सेवा करने से राधा और कृष्ण का प्रेम मिलता है, ये देने वाले हैं। परमत मदन लीला कंदरे कंदरे ते रचे नवजूनु दंदमस्मिन् मंदम इत किल कलनार्थक लक्ष्म कस्तक दयोर में निज निकट निवासम देही गोवर्ण। कैसी सुंदर इसमें अनुपम मणि रे जी रत्न सिंहास गिर्न पर दास तेन पर जे की नामा मत उदितम श्री राधिका वक्त चंद्रात प्रजनव तिलक से क्लिप्त वेद निज निकट निवास देही निरुपति श्री करुणेन श्री सखी नंदनेन तय कपट सको की तत्प्रियनाथ। मैं कपट हूं जैसा भी हूं किंतु मैं आपका हूं, इसलिए आप हमें ग्रहण हमारी कपटता को ग्रहण करते हम अपने को सर्वस्व तुम्हारे चरण में तो वो जरूर कृष्ण प्रेम देने वाले। इसी रूप में हम लोग भी गिरिराज जी की उपासना करें। मान लिया कि कृष्ण गिरिराज जी कृष्ण ही है ना, तो उनसे ज्यादा हमारा मतलब है ना श्रीमती जी से मतलब है। हमारी आराध्या कौन है? मन्नाथ से ब्रज विपिन चंद्र बदन सुंदरी वो राधा जी ही हमारी आराध्या है, तो हमको तो उनको प्रसन्न करना है ना, उनकी प्रसन्नता से ही सबकी प्रसन्नता है। इसलिए हरिदास वर्ग यही हम लोगों के लिए, हरिदास वर्ग होने के लिए कुछ प्रारंभिक चीजों की जरूरत है। प्रकाश प्रकाश देखिए जैसे अंधकार ना हो, क्या है वो तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार की तरफ में मत जाओ, निद्रा आलस्य प्रमाद ये सब क्या है, तम है, ज्योतिर्गमय ज्योति के तरफ में जाओ। हरि कथा ज्योति है, ठीक से सुनिए बैठ। तो हरिदास बनने के पहले कुछ और प्रयत्न करना, अग्रह मुक्ति तो सबे सर्वबंधना तो अवश्य होते पारे श्री कृष्ण के दास, और श्री कृष्ण के दास होने पर भी कुछ बच रहता है, किंतु यहाँ पर संपूर्णिक भाव से यहाँ पर कृष्णदास राधा दास इत्यादि को लेकर के यहाँ पर कहा गया है, साधारण रूप में कहा गया, किंतु केवल कृष्णदास कहने पर भी और कुछ बच रहता है। फिर भी इस चीज को अच्छी तरह से समझने के लिए थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। क्या उतरना पड़ेगा? पहले माया का, सब तो जगत का क्या लुक है, माया का। कैसे माया दास है? कृष्ण बोली थी जीव अनादि वही, अतएव माया तारे दे पिता की पाइले जनमति छन्न है, मायाग्रस्त जीवर है से भाई कबू राजा कबू प्रजा कभी विप्र शूद्र कबू कबू सुखी कबू दुखी कभी दुखी कभी सुखी कभी कितु शूद्र एवं संसार भ्रमिते कोनो भगवान जन
भगवान जी
जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए से बीज ताते करे माली भी भैया से कौन
श्रवण कीर्तन जले करे कृष्ण
तापरे कतो सुंदर एरक रूपम रूप भागवत आ वेद शास्त्र उपनिषद उठाऊ नहीं, कहीं नहीं है ये ऐसा सुंदर। भक्ति के लिए यदि कुछ पढ़ना है तो चैतन्य चरितामृत जरूर पढ़ना पड़ेगा। चैतन्य चरितामृत को समझने के लिए षट संदर्भ जरूरी है, षट संदर्भ मूल है, और संदर्भ को समझने के लिए भी हमारे सनातन गोस्वामी जी का बृहत भगवतामृत और रूप गोस्वामी के भक्त स्वामी सिंधु उज्ज्वल जन्मणि का भी कृपा मिलते हैं, नहीं तो ये सब ग्रंथ समझ में कुछ भी नहीं आए। या उन ग्रंथों को समझाने के लिए ये सब ग्रंथ भक्त भक्त विनोद ठाकुर विश्वनाथ जगत ठाकुर गोस्वामी इत्यादि इसलिए ये सब चीजें समझने के लिए हम लोग का बड़ा भारी सौभाग्य है कि इस अंततः इस धारा में हम लोग आए हैं। आज नहीं तो कल इस धारा में हम लोग स्नान कर सकते हैं, इतनी बड़ी भारी सौभाग्य। तो पहले हम लोग मायादास, मायादास माने यह शरीर देह और दैहिक भंजन पुत्र परिवार जितनी आसक्ति की वस्तुएं हैं उनके प्रति चित्त का लगना ये मायादासत्व है। संसार में यही बद्ध होने तक कुछ न कुछ रूप में ये जरूर रहेगा। यदि वो साधु और गुरु अथवा कृष्ण और गुरु की कृपा पाता है, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति बताए, अब यहां से उसका कुछ उत्थान हुआ तो माया दास से जबकि चला ऊपर में, कुछ सुकृति हुई, साधु संग हुआ, गुरु की कृपा हुई, अब वो गुरुदास हुआ। पहला स्टेप है गुरुदास। माया दास के बाद में क्या करेगा, गुरु ही तो पहचानेंगे, जो कुछ करेंगे गुरु को बिना कुछ नहीं, इसलिए गुरुदास। गुरुदास कहने से भी गुरुदास एक ही प्रकार के नहीं होते। पहला है गुरु ध्रुव, गुरु ध्रुव जैसे होता है ना, ब्राह्मण ध्रुव है, ध्रुव वैष्णव ने शिष्य ध्रुव ना तो शिष्य ध्रुव कहा, अच्छा शिष्य ध्रुव हुआ पहले, शिष्य ध्रुव के बाद में तामसिक गुरु, शिष्य गुरु का सेवक, तामसिक गुरुदास, राजसिक गुरुदास और सात्विक गुरुदास, निर्गुण गुरुदास। निर्गुण के बाद में ये निर्गुण हुआ उत्तम दास, वे हुए कनिष्ठ और मध्यम, और निर्गुण वाला हुआ ये हुआ उत्तम, और इसके बाद में और कुछ है, तब वो जा करके होगा कृष्णदास। इस चीजों को बतलाने के लिए थोड़ा सा हम थोड़ी से हम देखो एक ऊंची नीची अच्छे पढ़े ना जाए कभी कभी सब में धरे रहते ऐसा टूट टूट था करे, ठीक समय पर चला गया। इस चीज को समझने के लिए गुरु ब्रुवो समझो, गुरु का सेवक नहीं है किंतु सेवक कहता है,
गुरु वाला शिष्य गुरु
इसी को कहते हैं शिष्य गुरु। गुरु ब्रुवो का भी लिखा है बात, गुरुत्व नहीं है किंतु बहाना करता है गुरु होने का, और शारीरिक और सांसारिक सुखों के लिए ही शिष्य करता है तो वो गुरु ध्रुव है। परमात्मा से जिनका कोई संबंध नहीं वो है गुरु ध्रुव, और शिष्य ध्रुव उसको कहते हैं जो कि गुरु से यथार्थ कोई संबंध नहीं किंतु किसी को मारने के लिए, किसी से स्पर्धा करने के लिए, किसी से ईर्ष्या करने के लिए, तामसिक भावनाओं को लेकर कपटता पूर्वक गुरु पदाश्रय करते हैं, और गुरु की सेवा न कर अपने मन की उच्छ्वासों को भुनाते हैं। भुनाना जानता है ना, जैसे रुपया नोट भुनाते हैं ऐसे भुनाते हैं, तोड़ाते हैं, तोड़ाते हैं माने आदान चेंज करते हैं, इनको कहते हैं गुरु। प्रभुपाद जी के एक प्रबंध में हमने देखा, जैसे पहले तो होता था गुरु एक वर्ष तक शिष्य की प्रतीक्षा करता था देख करके, देखने के लिए, और शिष्य भी गुरु को देखने के लिए एक वर्ष तक का समय रखता था। इसके बाद में संतुष्ट हो जाने पर परमार्थिक आदान प्रदान होने के बाद में तब शिष्य को दीक्षा देते थे और वो ग्रहण करता था। इसलिए ये सब गड़बड़ियां नहीं होती थी जो आजकल के युगों में होती हैं। थोड़े में शिष्य का हो गया, थोड़े में गुरु का हो गया, ऐसा नहीं। ये तो जन्म जन्मांतर का संपर्क है, एक दो जन्मों का नहीं। और इसी संबंध के ऊपर में बेसिक पर रखा गया है कृष्ण प्रेम अथवा कृष्ण दास अथवा जो कुछ जिसका आधार जो ठीक होगा वैसे ही। तो जैसे द्रोणाचार्य जी बच्चों को सिखला रहे हैं, बच्चे कौन हैं? अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, धर्मराज, दुर्योधन और सब, ये 100 भाई वो और 5 भाई, 105 इनके शिष्य हैं। समान रूप में सिखलाते हैं, किंतु फिर भी प्रीति है अर्जुन पर अधिक। कोई एकलव्य व्याद बहेलिया का सरदार का लड़का अर्जुन की प्रतिष्ठा सही नहीं गई, कुछ नास्तिक टाइप का, विद्वेषी टाइप का। गुरु के शिष्यों का लक्षण लिखा है कि उत्तम कुल का शिष्य हो, निम्न कुल के शिष्यों को ग्रहण मत करना। जिसका चरित्र ठीक नहीं, जिसका कुल ठीक नहीं, आचार विचार ठीक नहीं, माता पिता का ठीक नहीं, ऐसे लोगों को दीक्षा नहीं देनी चाहिए, विचार करके करेगा। इसमें बहुत पुलिस के गवर्नमेंट के पहले नौकरी में हमने देखा था, हम लोगों के समय में विचार होता था तब लेते थे, CID आकर के सब देखते भाई इनका कुल कैसा है, माता पिता कैसा है, खानदान का। तो वो इनके पास में आया, कहा जी महाराज, प्रभु गुरुदेव, मैं आज से आपको गुरु के रूप में वर्णन करता हूँ, आप कृपया मुझे भी धनुष इत्यादि की शस्त्र शिक्षा दे। तू कहाँ रहता है? तो अमुक जगह। पिता कौन है? तो किस लिए ये धनुष विद्या ये लेना चाहता है? मौन हो गया, बहुत पूछा तो भी नहीं बतलाया, किंतु भीतर में थी। अर्जुन को भी नीचा दिखलाना है, दुर्योधन से मित्रता थी, जैसे कर्ण का था ना ऐसे इनसे थी, भीतर बड़ा कलुषित था। देख करके गुरु तो नाड़ी देखते ही समझ जाते हैं इसकी नियत ठीक नहीं, ये लेना चाहता है कि शिष्या बस जगत का ध्वंस करेगा। आज भाई हमारे यहाँ आपके लिए स्थान नहीं, हम तो यही राजकुमारों को शिक्षा देते हैं जिनका शील आचार विचार ठीक है, हम दूसरे को ग्रहण नहीं करते। लौटा दिया, बड़ दुखी होकर के वो चला गया वन में जाकर के, और द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर और सीखने लग गया। कुछ दिनों के बाद में जब इन लोगों की शिक्षाएं कुछ आगे बढ़ गई तो ये समस्त बच्चों को लेकर के वन में गए इनकी परीक्षा करने के लिए, कैसा कैसा कोई सीखा। तो जब वन में पहुंचे तो एक कुत्ता था, वो भौंकने लगा जोर से इनको देख करके। इतने में देखा क्या, उसका भौंकना एकदम बंद हो गया। भाई बंद क्यों हो गया? चलो तो देखे। देखा जी बाण से उसका मुख भरा पड़ा है किंतु कहीं विक्षत विक्षत नहीं है। भाई ये बाण कौन चलाया ऐसा जो कहीं चोट नहीं लगी और एकदम बंद हो गया। अब जिधर से बाण आ रहा है उसकी दिशा उन्होंने मुख से निर्धारित कर लिया, कुत्ते का मुख जिधर से है उसके ठीक कौन से इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, और उधर में चलने गए आगे। देखा जैसे एक युवक काला बड़ा ढील दौड़ का हाथों में तीर धनुष लेकर और खड़ा है। देखते हैं इनको, प्रणाम किया द्रोणाचार्य को, तुम कौन है? तो मैं एकलव्य हूं। ये बाण तुमने चलाया? तो हाँ हमने चलाया। बड़ा हस्तलाघव तुम्हारे अंदर में,
तुमने किसे सीखा, तुम्हारे गुरु कौन है? बस साष्टांग प्रणाम किया, आप ही हमारे गुरु, मैंने तुम्हें कभी शिक्षा नहीं दी। तो ये देखिए आपकी मूर्ति हमने रखी है और इसी से शिक्षा मैंने ली। अच्छा तो तू हमारा शिष्य है? कहाँ, ठीक, तब तो तुम बहुत सीख गया। तो तुमने दक्षिणा तो हमें दी नहीं गुरु को, तो दक्षिणा दे दो। अजय कहिए आप जो कुछ कहेंगे वो दे दूंगा, ये समस्त शरीर आपके लिए। तो ठीक, अपना तुम दाहिना अंगूठा काट करके हमको दे दो, बस एक सेकंड की देरी नहीं की, बस हाथ काटा और लेकर रक्त से लहू लुहान हो गया। उन्होंने ले लिया, ये नहीं कहा जैसे तू बड़ा शिष्य है, तू अपना अंगूठा दे दिया, ये किया, कोई भी महाभारत में इसका वर्णन नहीं, ले लिया। लेकर के ठीक, बस पांचों पांडवों को लेकर के चले आए, विषाद के साथ में आए। किस लिए? हम जिसको शिक्षा नहीं देना चाहते थे और उसने ये सीख लिया, ये अच्छी बात नहीं, ये जगत का मंगल नहीं होगा। वही एकलव्य बड़ा जब हुआ महाभारत के युद्ध में, के बाद में जब समाप्त अभी होने को ही था, तो कृष्ण से युद्ध किया और युद्ध करके कृष्ण को और पांडवों को मारना चाहा, तो कृष्ण ने चक्र सुदर्शन से उसको काटा था। तो कृष्ण किसको काटते हैं? चक्र सुदर्शन के द्वारा, कैसे दुष्ट लोगों का संहार करते हैं। ऐसा ये था गुरु की इच्छा, जब गुरु को अर्पण कर दिया शरीर, गुरु कहते हैं जो कुछ करते हैं गुरु आज्ञा ही अभिचार, गुरु की आज्ञा का विचार नहीं करके पालन करना ही तो शिष्य का कर्तव्य है। उन्होंने कहा ये तुमको नहीं पढ़ाएंगे, तुम्हारा पढ़ना अच्छा नहीं है, किंतु हम पढ़ेंगे ही। वो किसी कारण से कह रहे हैं, जगत के मंगल के लिए कह रहे हैं, उसका तुमने उल्लंघन किया। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जो कर्मी जड़ हैं वो तो इसको आदर्श गुरु सेवक के रूप में मानेंगे, क्योंकि कर्मी जड़ हैं, बुद्धि उनकी ध्वंस हो गई है, उनका कोई विचार शक्ति नहीं है, वो स्थूल दर्शी हैं, इसलिए भीतर में वो परमेश नहीं करेंगे, इसमें परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए ये तो गुरु गुरु। अब आगे के में चलें, तामसिक गुरु सी सेवक, गुरु दास। कर्ण को ले लो, कर्ण गया अर्जुन की प्रतिभा देखकर और कुछ अपमानित हुआ। वो रंगशाला में जब अर्जुन से बराबरी कर रहा था, अंत में वहां पर भीष्म पितामह जी ने कहा कि तू आया है यहां पर समता करने के लिए, ये राजकुमार हैं, तुम पहले बतलाओ, अपना वो कर्तव्य दिखला लिया ना, वो सब अर्जुन के बराबरी जितना बाण चलाना, मस्तभेद इत्यादि सब कुछ कंप्लीट जैसा दिखाया तैसा ही उसने दिखा दिया। सब लोग वाह वाह करने लगे और ये तो दुर्योधन तो उठ करके एकदम गले से मिल गया। भीष्म पितामह ने कहा ये बतलाओ, इनकी बराबरी करने आया, तुम किसका पुत्र है? ये तो पांडु के पुत्र हैं और ये धृतराष्ट्र के पुत्र हैं,
राजपुत्र हैं,
तुम किसका पुत्र है? तुम्हारे अपने मैया का और पिता का नाम बतलाओ। बतला नहीं पाया तो तुम्हारा माता पिता का ठीक नहीं। तो उसने कहा मेरी मैया का नाम क्या? राधे,
राधा,
मैं उसे राधे। तो ये तुम उनका लड़का है, अरे वो तो रथ चलाता है, वो सुत पुत्र है, तो तू सुत पुत्र है, सुत पुत्र को यहाँ पर इन राजकुमारों से समता करने का कोई भी अधिकार नहीं, इसलिए तुम सीधे यहां से चले जाओ। उस समय में दुर्योधन एकदम उठ करके खड़ा हुआ और अपना राज मुकुट देकर कहा ये अंग देश का राजा और हमारा परम मित्र है, इसका असम्मान न हो। किंतु भीष्म पितामह के सामने उसने कुछ नहीं चला, लज्जित होकर के चला गया। उस समय में वो गया कहाँ? वो गया परशुराम जी के पास। इसको हराने के लिए हमको उनसे सीखना पड़ेगा। चला गया। मैंने कहा कि तू किसका बेटा है, कैसा है, तुम कौन जाति का है? तो मैं ब्राह्मण का लड़का। तो ठीक, क्षत्रिय का नहीं कहा, नहीं तो वो गड़बड़ कर रहा। तो वो क्षत्रिय का न कह करके ब्राह्मण का पुत्र बदला है। पर ऋषि महर्षि लोग बड़े सरल सीधे होते हैं, मान ली उसकी बात, ये झूठ किस लिए कहेगा? और शस्त्र शिक्षा के लिए, परमार्थ के लिए है, इसलिए इसको देना चाहिए। इसलिए उसको ब्रह्मास्त्र से लेकर सब प्रकार के जितने अस्त्र हैं सबकी शिक्षा दी। अब उसका गुरुगृह से दीक्षा समारोह होना थी, बात के लौटना था। दो एक दिन पहले ही
समावर्तन
ऋषि उसके गोदी में सिर रख करके सो गए परशुराम। बरसात का समय, कोई लाल कीड़ा वज्रपत कीड़ा वो कज ने कैसे ऊपर से चढ़ा और छेद करता हुआ नीचे निकल गया, रक्त की धारा बहने लगी। और ये कर्ण तस्य मश नहीं हुआ, जब रक्त इनके सिर में लगा तो कुछ गर्म जब लगा तो अरे ये क्या देखा, अरे ये रक्त, रक्त कहां से रक्त है? अरे ये तो तुम्हारे जंघे को छेद दिया ये कीड़े ने, तुमने कुछ कहा नहीं? तो नहीं गुरु जी, आपको देखा जैसे आप उठ जाएंगे। तू ब्राह्मण किसी हालत में नहीं हो सकता, तुम जरूर क्षत्रिय है। ब्राह्मणों का इतना धैर्य नहीं होता, जरूर हमको उठा देता। ठीक ठीक बोलो, मैं तो अभी अभिसंपात हूं, तुम किसका लड़का है? मैं सूत पुत्र हूं। तुमने कहा था पहले, क्यों नहीं कहा? तुमने किस लिए यह शस्त्र की शिक्षा ली? अब सच सच बतलाओ। तो अर्जुन को परास्त करने के लिए। तो हमको पहले बतलाए नहीं, तो तू शिष्य नहीं, जाओ हमसे झूठ बोला, इसलिए जब समय आएगा हमारी दी हुई समस्त शिक्षाओं को तो भूल जाएगा, उस समय काम में नहीं। और जब तक नहीं है काम पड़ा तब तक ठीक है, तुमने जैसे हमसे किया हम भी वैसे कर। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। ये तामसिक भाव इसको कहते हैं, ये तामसिक गुरुदास हुआ। और ऊपर उठ जाइए थोड़ा, राजसी। राजसी किसको कहते हैं? सुख ऐश्वर्य भोग पत्नी इत्यादि के लिए, पति के लिए जो गुरु सेवा होती है वो होती है राजसी। भक्ति का ऐसा तीन विचार है ना, कहां पर ये विचार है? कपिल देव देवती के राजसिक, तामसिक और सात्विकी भक्ति। भक्ति तो एक ही प्रकार की है, किंतु जैसे जैसे अधिकारी लोग भक्ति का अनुशीलन करते हैं उस भक्ति का नाम वैसा ही कह देते हैं। भक्ति एक ही प्रकार की है, उत्तमा भक्ति केवल। ऐसे गुरु सेवक तो एक ही है, किंतु उनके भक्ति के भावना के या विषयों के तारतम्य से उनका नाम रख दिया गया है। अब राजसिक में चलो। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की, मैं शादी नहीं करूंगा, आ कुमार ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं राज्य पद नहीं ग्रहण करूंगा। किंतु अपने भाइयों की शादी के लिए काशी नरेश की तीन लड़कियों को जीत करके ले आए, अंबा, अंबालिका और अंबिका, जिसमें दो की तो शादी होगी, तीसरे ने कहा कि हम आप ही से शादी करेंगे, आप हमको हर ले आए हैं इसलिए आप ही से शादी होगी, जरूर करना ही पड़ेगा। उन्हें मैं तो शादी कर लू, तो कहा जी सबसे कहा इधर उधर सबसे कहा किसी कि वो कोई भी इनकी सहायता ना कर सका। भीष्म तो महाप्रचंड थे, बलवान थे, उनके गुरु के पास में गई और रोने लगी डकर डकर करके, क्यों रोटी है बेटी, क्या बात थी? तो भीष्म पितामह जी हमको जीत करके ले आए, उस समय उनका नाम था देवव्रत, देवव्रत में जीत करके ले आए और अपनी भाई से शादी करा रहे हैं, हम उनसे शादी करेंगे, हमसे वो शादी करते नहीं हैं, आप कृपा करके उनको कह दीजिए जब जीत करके लाए हैं हमने उनको माला दीगी, मैं माला दूंगी उनसे शादी होगी। अच्छा, बहुत तो रोने लगी गिगड़ाने, दया आ गई। फिर हम पितामह को बुलाए, उनके शिष्य थे ये परशुराम जी के, बुलाए और बुला करके बोले जैसे तुम उसको शादी क्यों नहीं करता, तुम जीत करके लाया था, हाँ क्यों नहीं करता? तो अपने भाई के लिए मैंने कहा, ये स्वयंवर जीत करके उनको लाया, हरण करके ले आया। वो मैं नहीं जानता, जब तुम जीत करके लाए तो तुम इसे शादी करो, तो आप ऐसा आदेश मत करें। हमने प्रतिज्ञा की है पिताजी से, मैं शादी नहीं करूंगा, राज्य नहीं लूंगा, ये मैंने राज्य संबंधी, और पिता है लोक संबंधी, इनके लिए मैं नहीं करूंगा। तो तुमने संदर्भ जाकर के उसको जबरदस्ती पकड़ करके अपहरण क्यों किया? उस समय याद नहीं थी, अब इसका भागी कौन होगा? तो नहीं, हम पैसा तो या तो करो, इसे शादी करो, नहीं तो हमसे युद्ध करो। बस ये सुनते ही बड़े प्रसन्न हो गए, वो एक रास्ता तो खुल गया। कहा जी मैं युद्ध करूंगा, युद्ध में आपसे मर जाऊंगा, किंतु शादी नहीं करूंगा। बस उनके साथ में युद्ध हुआ, अंत में कोई नहीं जीत सका, न वही जीते न वही जीते, तब ब्रह्मा इत्यादि आकर के और दोनों में फैसला करा दिया, फिर शादी उन्होंने नहीं की। किंतु गुरु का अपमान तो हुआ, किस लिए हुआ? कोई पारमार्थिक कारण था, राजसिक, इसलिए ऐसे शिष्यों को, भीष्म पितामह जी जैसे लोगों को यहां पर राजसिक,
राजस्विक,
सात्विक में कौन आएगा? सात्विक गुरुदार सात्विक में आएंगे, अरुणी और उपमन्यु। अरुणी का नाम सुना? अरुणी ने क्या किया? गुरु जी के आदेश के लिए, गुरुआइन के आदेश के लिए वर्षाकाल में, वर्षाकाल उसमें भी शिशिर माने ठंड का समय, कड़की माने कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ रही, वर्षा हो रही, और मेड़ बांधने के लिए वर्षा में, मूसलाधार वर्षा में जाओ रात के समय, कहा जैसे उसका मेड़ बांधोने तो पानी सब गिर जाएगा। बस ये लोग चले गए, ये चले गए, ये केवल अरुणी बांध बांध को बांधने की चेष्टा की, किंतु बांध टूट रहा है बार बार, पानी की धारा बड़ी प्रबल आ रही है, कीचड़ देता है और फिर वो मिट्टी बह जाती है। अंत में देखा और कोई उपाय नहीं तो अपने आप सो गया, यहां से वहां तक पानी तो जा रहा है किंतु कम अब जाने लग गया, और सवेरे होते होते छिछूर का एकदम निर्जीव जैसा हो गया। लाल थे तो गुरु अरुणी कहां है, अरुणी कहां है, अरुणी कहां है, मरते हुए जैसे अंतिम क्षीण आवाज में उत्तर आया, गुरु जी मैं यहां पर हूं, कहां है? मेड़ के पास में। आकर के देखा जैसा कि तुम यहां पर सोया क्यों? तो पानी मैंने मिट्टी दी किंतु वो पानी बह जाता था, इसलिए मैंने खुद ही यहां पर फेंक उठो छाती से लगा लो, समस्त वेद वेदांग ऐसा ही समस्त कुछ जो कुछ है सब तुमको स्तुति हो जाए, बस मंत्र दृष्टा एक ऋषि बन गए। उपमन्यु की यही बात, कहा जो कुछ खाना मत हमारे आदेश से, तुम बड़ा मोटा हो रहा है, गायों का दूध पी लेता है, अतः हाँ जब बछड़े पी लेते हैं इसके बाद में पी लेता हूं, बचा हुआ मत पीना। फिर कहा अरे तू मोटा हो रहा है, तू गैया का दूध पीता है तो अब नहीं पीता, तो क्या करता है? तो गैये जब बैठ करके पागुल करती हैं तो यहां पर थोड़ा सा लग जाता है, तो मैं उसको पोंछ करके और खा लेता हूं। अरे तू गायों का मुंह से फेन निकाल लेता है, खबरदार कल से मत करना। अले जी जी आगे आगे ना की
आगे हो जी
आगे मैंने जो आज्ञा ठीक। अब उस दिन कुछ नहीं खा किंतु भूख लगी, तो उसने एकवंत का पत्ता लिया और खाया तो कुछ आंख में लग गई, अंधा हो गया, एक कुएं में गिर पड़ा। शाम को लौटा नहीं, गायें तो लौट आई, गुरुवाणी ने देखा जैसे वो कहां गया सुमन, गुरु जी खोजने के लिए निकलते निकलते रात हो गई। अरे उपमन्यु तू कहां है, कहां है, कहां है, खोजते खोजते खोजते, अरे गुरु जी मैं तो कुएं में गिर पड़ा। कैसे गिर पड़ा? अच्छा गए उसको कुएं से रस्सी उस्सी डाल करके और जैसे तैसे निकाला। अरे तू कैसे गिर गया? तो गुरु जी आपने कहा जो दूध मत पीना तो मैं दूध बन, आपने फिर कहा जैसे ये गायों का फिर मत लेना तो उसको मैंने बंद कर दिया। तो मुझे बड़ी भूख लगी, मैं क्या करूं? तो मैंने एकवंद का पत्ता तोड़ लिया, देखा कि दूध जैसा निकलता है, तो उसमें से दो बूंद आंख में चला गया, खाया और मैं अंधा हो गया। ठीक, तुम हमारा आदेश पालन किया, खाया नहीं, और जैसा मैंने कहा वैसा किया। जाओ वेद उपनिषद सब तुमको। वेद है क्या चीज? आंख भी ठीक हो गई। वेद माने वेद माने वेद त्रिकांडात्मक होता है। एवं त्रय धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामालभंते, और फिर वहां से छोड़ करके फिर ये पृथ्वी में आते हैं। तो वेद त्रय माने कामना मूलक सकाम, संसारिक वासनाओं वाली, इसलिए इसको सात्विक कहा गया इन दोनों को। अब इसे ऊपर थोड़ा सा चल चले हम, अब भागवत में प्रवेश करें। भागवत में देखते हैं, अब यह हम निर्गुण भक्ति की, अब निर्गुण गुरुदास, अब तक सात्विक राजसिक और तामसिक और गुरु गुरु ले गए, अब चले हम लोग अब निर्गुण पर। भागवत में बतलाया सुदामा और कृष्ण गुरुवाइन के आदेश से जंगल में गए, वर्षा हो रही थी, सर्दी का वही समय, रात भर बोझा लेकर के सिर पर खड़े रहे और गए नहीं। सवेरा जब होने को हुआ, सांदीपनी बिहारी के लेकर प्रदीप लेकर के, अरे कृष्ण, अरे सुदामा, तू कहाँ है कहाँ है कहते हुए आए, रात भर भीगते रहे बेचारे, और रात भर गट्ठर सिर पर पड़ा रहा। है कौन? स्वयं कृष्ण और ये सुदामा जी, दोनों भी तेरे। फिर गुरु जी आए, अरे तुम लोग लौटा क्यों नहीं, वर्षा हो गई, रास्ता मालूम नहीं, किधर पानी अधिक है किधर कम है, चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। अरे बोझा तो उतार देता तो गुरु जी, वो भीग जाता तो फिर रसोई कैसे, तो भीग तो ऐसे ही जाता, किंतु पानी में और भीग जाने से नीचे हो जाने से तो और लबालब भर जाता, इसलिए हम लोगों ने ये सिर पर ही लकड़ी लेकर के जाओ। जितनी 60 कलाएं की 64 कलाएं हैं संपूर्ण, तुम अभी हो जाओ। ये 60 कलाएं क्या चीज हैं, या 64 कलाएं, ये भी वेद के ही ये सब चीजें हैं, किंतु फिर भी कुछ पारमार्थिक है, ये कृष्ण है नहीं इसमें। इसमें कुल अपना कोई लाभ हानि का विचार नहीं, गुरु सेवा, एकमात्र गुरु सेवा के लिए किया, इसलिए यह निर्गुण हरिदास
गुरुदास।
अब थोड़ा सा और आगे चलिए इधर की तरफ में, यहां तो निर्गत हुआ किंतु अभी अभिष्ट नहीं हुआ, थोड़ा सा आगे चल करके एक श्लोक हम लोग सुनते हैं। चिंता मनीष जयति होम गुरु गुरु में शिक्षा
पुरुष भगवान
मौली जत्पाद पल्लव कल्पतरु पल्लव शेखरेषु लीला स्वयंवर रसम लभते। अब इस लोक में थोड़ा सा देखो ये कैसा है और ये कैसे गुरु दास है। कहते हैं कि चिंतामणि हमारी गुरु, कौन सी गुरु, जिसने पथ दिखाया, इसलिए पथ दिखाने वाला यदि वेश्या भी हो कोई भी हो तो वो कैसे मान्य है, गुरु के रूप में मान्य है, पथ प्रदर्शक गुरु है उसके हम कभी भी उसे उऋण नहीं हो सकते हैं कि पथ दिखा है, इसलिए दीक्षा ये पथ प्रदर्शक गुरु की बात चैतन्य चरितामृत में भी कही गई। दूसरा दीक्षा गुरु, तीसरा शिक्षा गुरु, इन सबको शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों को कृष्ण का स्वरूप मानना, दोनों में किसी को कम मत मानना। कहीं कहीं पर दीक्षा गुरु अधिक श्रेष्ठ है योग्यता के अनुसार, कहीं कहीं शिक्षा गुरु भी श्रेष्ठ हो सकता है। जैसे हमारे गुरु हैं और कृष्ण को यदि हम शिक्षा गुरु मानते हैं तो कौन श्रेष्ठ हुए, चैतन्य महाप्रभु को हम अपना शिक्षा गुरु मानते हैं तो कौन श्रेष्ठ हुए, अभी रूप गोस्वामी है हमारे दीक्षा गुरु, किंतु दीक्षा गुरु को वो क्या कहते हैं
घोड़ा डिंगे घाट
ये नहीं होना चाहिए। यदि हम अपने पथ प्रदर्शक माने पथ प्रदर्शक गुरु के प्रति हम इतने ऋणी हैं, तो जिस दीक्षा दिया उसके प्रति हम ऋणी नहीं है। उस समय याद रखना होगा किसका, हमारे श्यामानंद जी के गुरु हृदय चैतन्य ने, हृदय चैतन्य जी और जीव गोस्वामी को विचार करो। जिस प्रकार से इन्होंने यथायोग्य जो सम्मान दिया ठीक ऐसा ही होना चाहिए, अन्यथा हम लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। यथायोग्य जो सम्मान जिसको प्राप्त है वो दे करके चलना, जब प्रदर्शक हो देंगे तो दीक्षा गुरु को नहीं, दीक्षा गुरु को देंगे। शिक्षा गुरु में कुछ रागानुगा का कुछ संबंध है ना, शिक्षा गुरु में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम दीक्षा गुरु को पिता के रूप में नहीं कह सकते, उनसे पूछ नहीं सकते, लज्जा संकोच है ना। किंतु शिक्षा गुरु कुछ छोटा चाचा जैसा है, छोटा चाचा समझते हो,
चाचा गुरु
तो गुरु से जो बातें नहीं होगी ना, चाचा गुरु जो है ना वो कुछ वो ऐसा है नहीं रहे थर उनको याद करने, वो छोटा माने कोई दोस्त यार दोस्त होता है ना, यार है कुछ यार दोस्त, उसके समान में समान भाव में खेलेगा। जैसे कृष्ण जो है